तफसीर सूरत अलमाइदा की पिछली आयत में आपने पहली बात तो ये सीखी कि मोमिन की जिंदगी एक पाबंद जिंदगी है और मोमिन हालात आम हो या खास अल्लाह के अहकाम पर अमल करता है। दूसरी बात, हलाल और हराम का कानून आपने तफसील के साथ पढ़ा और इसके साथ ही ये बात भी हमारे सामने आई कि कोई भी कानून जो है जैसे हलाल और हराम का अगर तफसील के साथ बता दिया जाए लेकिन बिलाखिर आदमी का ये इरादा ही होता है कि जो उसको किसी चीज से रोकता है और जो सही चीज है उसकी तरफ ले जाता है, तो कानून की तफसील जानने से बात नहीं बनती जब तक कि उस पर जो है वो अमल ना किया जाए। तो ईमान का तकाजा क्या है कि कानून को मानते हुए फरार की राहें तलाश करने की बजाय अमल किया जाए, और कानून पर अमल करने का जो इरादा है, विल पावर है, ये अल्लाह का खौफ है जो आदमी को पाबंद करता है। फिर ये भी पढ़ा कि मुसलमान औरत के लिए किसी हाल में जायज नहीं कि वो गैर मुस्लिम मर्द से निकाह करे और मुसलमान मर्द को मखसूस शराइत के तहत जो है वो निकाह की इजाजत दी गई कि वो अहले किताब की औरतों के साथ निकाह कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी जो है वो कुछ शराइत कि वो जानिया ना हो और वो निकाह के हिसार में रहना चाहती हो और मकसद जो है वो खुली बदकारी ना हो या चोरी छुपे आशनाई ना हो। और फिर ये बात भी कह दी कि ईमान का सौदा नहीं करना और ईमान के बगैर जो है अमल की कोई हकीकत नहीं, और अमल भी वही जो खालिस अल्लाह के लिए किया जाए और इंसान जो है वो अल्लाह की खातिर जब अमल करता है तो उसके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हो जाता है। और आज के सबक में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस्म की तहारत के क्या अहकामात बयान किए हैं। पहले हलाल और हराम के पढ़े और आज हम जो जिस्म की तहारत से मुतल्लिका अहकामात हैं वो पढ़ेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो। कुरान का ये अंदाज बड़ा ही खूबसूरत है, ईमान लाने वालों को झंझोड़ने वाला, अमल पर आमादा करने वाला। आप अपने अमल का जायजा लीजिए, आप अपने ईमान की खबर लीजिए, आप अपने अपना मुहासबा कीजिए कि क्या आपका ईमान जो है वो धड़कता हुआ है, जानदार है। कहा ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जिसमें मर्द औरतें छोटे बड़े सब शामिल हैं। इजा कुम तुम इल सलाती, जब तुम उठो नमाज के लिए। तुम जो है काफ वो मीम से है और कुम तुम जब तुम खड़े हो जाओ, जब तुम उठो इल सलाती नमाज के लिए। फ़ग़सिलू, फ़ग़सिलू गुसल से है, गैन सीन लाम गसला धोना। फ़ग़सिलू पस धो लो, वुजूहकुम अपने चेहरों को, वा अईदियकुम और अपने हाथों को, इलल मराफिकी कोहनियों तक, वमसहू और मसा कर लिया करो, बेरऊसेकुम अपने चेहरों का, वमसहू और मसा कर लिया करो, बेरऊसेकुम अपने सर का, वा अर्जुलकुम और अपने पांव, इलल काबैन टखनों तक धो लिया करो। अब आप देखिए कि यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो हुक्म दिया है कि जब नमाज के लिए खड़े हों, नमाज पढ़ने का इरादा करें और अगर उस वक्त वुजू ना हो तो वुजू कर लें। फिर आप देखिए कि सूरत अलमाइदा की आयत नंबर 6 में वुजू का तरीका बताया जा रहा है। इसमें आप देखिए कि सबसे पहली बात क्या कही, फ़ग़सिलू वुजूहकुम, कि अपने मुंह धोइए। अब आप देखें कि जो मुंह धोना है इससे क्या मुराद है कि एक एक दो दो या तीन तीन मर्तबा दोनों हथेलियां धोनी, कुली करनी, नाक में पानी डालकर झाड़ना, ये सब चीजें मुंह में शामिल हैं। क्योंकि मुंह धोने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले हाथ धोने हैं, ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से इसकी रहनुमाई मिलती है। फिर इसके बाद मुंह धोना से मुराद क्या है कि कुली करना, नाक में पानी डालना, ये भी जो है मुंह का ही हिस्सा है, और कुली करना, नाक में पानी डालना, ये भी हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से जो है वो पता चलता है। इस सिलसिले में आपके सामने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस रखती हूँ कि एक दफा हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने पानी का बर्तन मंगवाया, फिर पहले अपनी हथेलियों पर 3 बार पानी डालकर उन्हें धोया, फिर दाना हाथ बर्तन में डाला, फिर कुल्ली की, फिर नाक झाड़ी, फिर 3 बार अपना मुंह धोया, फिर दोनों हाथ कोहनियों तक 3 बार धोए, फिर एक ही बार सर का मसा किया, फिर दोनों पांव टखनों तक 3 बार धोए, फिर कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई मेरे इस वुजू की तरह वुजू करे, फिर तहियतुल वुजू की 2 रकते इस तरह अदा करे कि इसके दिल में कोई दुनेवी ख्याल ना हो, इसके पहले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। इस हदीस को बुखारी ने रिवायत किया है। इसी तरह हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल खुला में जाते तो कहते, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊजु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। इसे भी बुखारी ने रवायत किया है। तो अब यहां पर भी वुजू का तरीका बताया जा रहा है। तो पहली चीज क्या सामने आई, फग्सिलू वुजूहकुम, तो अपने चेहरों को धोना, ये वुजू के अंदर जो है वो फर्ज है, और सुन्नत से हमें पता चलता है कि पहले अपने हाथ को धोना, फिर कुल्ली करना, फिर नाक में जो है वो पानी डालना, और फिर उसके बाद जो है वो चेहरा धोना। फिर दूसरी चीज जो हमें यहाँ पे पता चलती है वो है ऐदिया कुम, वो ऐदिया कुम, और अपने दोनों हाथ इलल मराफिकी कोहनियों तक। तो मराफिक जो है ये कहते हैं कोहनी को। और आप देखें कि मराफिक का रूट है रा फा काफ रिफ। रिफ का लफ्ज जो है ये नरमी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और मराफिक का रूट है रा फा काफ। अल मराफिक जो है वो जमा है और इसका वाहिद है अल मिरफक। कोहनी को कहते हैं और ऐसे सहारे या जरिए को कहते हैं जिससे आराम या नफा हासिल किया जाए। और अब आप देखें कि एक तरफ मैं ये कह रही हूं कि कोहनी को कहते हैं, दूसरी तरफ मैं ये कह रही हूं कि ऐसे आराम या सहारे को कहते हैं कि जिससे नफा हासिल किया जाए। ऐसे सहारे या जरिए को कहते हैं जिससे नफा हासिल किया जाए या आराम हासिल किया जाए। अब आप देखें कि कोहनी के सहारे लोग बैठते हैं और फिर जो है वो आराम हासिल करते हैं, तो इसीलिए जो है वो, क्योंकि कोहनी के सहारे से आराम मिलता है, इसलिए कोहनी को भी अल मराफिक कहा जाने लगा। फरमाया, वह ऐदिया कुम, और अपने दोनों हाथ इलल मराफिकी कोहनियों तक जो है वो धो लिया करो। तो मुंह धोने के बाद हाथों को कोहनियों समेत धोना चाहिए। फिर तीसरी चीज फरमाई, वमसहू बेरऊसेकुम, और अपने सरों का मसा कर लिया करो। मसा पूरे सर का किया जाए, जैसे हदीस से साबित है कि अपने हाथ आगे से पीछे गुद्दी तक ले जाए और फिर वहां से आगे को लाए जहां से शुरू किया था, इसी के साथ कानों का मसा कर ले। अगर सर पर पगड़ी या अमामा हो तो हदीस की रूह से जो है जैसे मोजों की तरह इस पर भी मसा किया जा सकता है, ये सही मुस्लिम की रवायत है। तो जो सर का मसा है ये एक मर्तबा ही कर लेना काफी है। फिर इसके बाद जो है चौथी बात है, वह अर्जुलकुम इलल काबैन, और अपने पांव जो है वो टखनों तक धो लिया करो। अब आप देखिए कि यहाँ पे जो है वो पांव जो है जैसे रिजल जो है वो वाहिद को कहते हैं, और अर्जुल ये जमा है पांव, और रजुल अगर होता तो आदमी को कहते हैं, और रिजल होता तो ये पांव को कहते हैं। तो अपने पांव जो है वो धो लिया करो। इलल काबैन, काबैन के मानी है टखनों तक, और यहां पे काबेन आया और दो टखने मुराद हैं, वाहिद है काब और काबेन दो टखने, और इसका रूट है काफ आयन बा, और मानी होते हैं उभरी हुई चीज को जो है वो काब कहा जाता है, जैसे जो उभरी हुई है, और आप देखिए कि खाना काबा को भी काबा कहते हैं ना, कि वो नुमाया है, और टखना जो देखें आप देखें कि वो जगह भी नुमाया होती है। तो फरमाया कि अपने पांव जो है वो टखनों तक धो लिया करो। तो यहां तक जो है वो वुजू का तरीका बताया गया है, और इस हिस्से में अब आप देख लीजिए कि सरों सरों का मसा करना है और पांव टखनों तक धोने हैं। और अगर जो है आप सफर में हैं या आपने मोजे पहने हुए हैं तो जो पांव है इस पर मसा भी किया जा सकता है, अगर आपने जो है वो वुजू करके मोजे पहने थे और अब दूसरी नमाज का वक्त हो गया तो अब जो है आप पांव को धोने की बजाय उस पर मसा कर सकती हैं। जैसे हजरत उरवा बिन मुगीरा अपने बाप से रवायत करते हैं कि मैं एक सफर में गज़वे तबूक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू कर रहे थे, मैं झुका के आपके मोजे उतार दूं, आपने फरमाया रहने दो, मैंने इन्हें बावजू पहना है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन पर मसा किया। इसे बुखारी ने रवायत किया है। तो इससे क्या बात पता चलती है कि अगर कोई जो है वो वुजू करके मोजे पहन ले तो उसके बाद अगर दोबारा उसको वुजू की हाजत पेश आए तो वो अपने मोजों के ऊपर मसा कर सकता है। जैसे आप यहाँ पर अक्सर बहनें जो है वो अगर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बेटियां पढ़ती हैं या वो जॉब के लिए जाती हैं, तो अगर उन्होंने फजर की नमाज के लिए वुजू किया और वुजू करके फिर उन्होंने जो है वो मोजे पहन लिए, सॉक्स पहन ली, और अब वो बाहर हैं जोहर असर मगरिब इशा के लिए उनको वुजू की जरूरत पेश आती है, तो फिर उनको जो है पांव धोने की जरूरत नहीं है, वो अपने मोजों के ऊपर मसा कर सकती हैं। तो जैसे अगर आप जैसे शहर के अंदर हैं, आप मुकीम हैं, तो एक दिन जो है तक आप मसा कर सकती हैं। अगर आप सफर में हैं तो फिर 3 दिन तक जो है वो मोजों पर जो है वो मसा हो सकता है। तो इस आयत में जिन अज़ा के धोने का जिक्र है इनको धोना फर्ज है, ये वुजू के फराइज हैं और इनके बगैर वुजू ना तमाम रहता है। नंबर एक, अपने चेहरे को धोना। नंबर दो, अपने हाथों को कोहनियों तक धोना, कोहनियां इसमें शामिल हैं। नंबर तीन, अपने सर का मसा करना। नंबर चार, अपने दोनों पाओं को टखनों तक धोना, और टखने इसमें शामिल हैं। और वुजू का तरीका भी मैं आपके सामने रख देती हूं कि वुजू की इब्तदा में सबसे पहले हाथों को गट्टों तक धोना, फिर कुल्ली करना, फिर नाक में पानी चढ़ाना और नाक झाड़ना, वुजू से पहले या हाथ धोने के बाद कुली करते वक्त मिसवाक करना, हाथ और पांव धोते वक्त हाथ और पांव की उंगलियों में खलाल करना, मुंह धोते वक्त दाढ़ी अगर घनी हो तो बालों में खलाल करना और हल्की हो तो जड़ों तक धोना, सर के मसा की तरकीब और छाती कानों और गर्दन का मसा करना, ये सब बातें हमें सुन्नत से मालूम होती हैं। अब आप देखें कि इस आयत में अज़ा को धोने का जिक्र है, अगर इन्हें एक बार धोया जाए तो फर्ज की अदायगी हो जाती है, लेकिन सुन्नत क्या है कि इन्हें 2 बार या 3 बार धोया जाए, और 3 बार धोना अफजल है। इसी तरह कुली करना और नाक में पानी डालना भी 3 बार अफजल और 3 बार से ज्यादा धोना मकरूह है। बाज लोग जो है ना जैसे वहमी से हो जाते हैं, धोते जाते हैं, तो एक दफा भी अगर धोती हैं आप तो उसे फर्ज अदा हो जाता है, 2 दफा भी आप धो सकती हैं, लेकिन अफजल क्या है कि 3 दफा धोया जाए। फिर इसी तरह जब आप वुजू कर रही हैं तो पहले दायां हाथ धोया जाए फिर बायां, इसी तरह पाँव में भी इसी तरतीब का ख्याल रखा जाए और दाईं तरफ से शुरू करना, उसे तरजीह देना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हर नमाज के लिए नए सिरे से वुजू करना वाजिब नहीं है, बल्कि एक ही वुजू से अगर आपका वुजू टूटा नहीं है तो आप कई नमाजें अदा कर सकती हैं। फिर अब सफर में मैंने जैसे बताया कि अगर आपने वुजू करके मोजे या जुराबे पहन ली हैं तो आप सफर के दौरान 3 दिन तक जो है वो अपना जो मोजे हैं जुराबे हैं इन पर मसा कर सकती हैं। और अगर आप मुकीम हैं, आप घर के अंदर हैं या आप बाहर जा रही हैं बाजार, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जॉब पर, तो पूरे 1 दिन के लिए आप जो है वो मसा कर सकती हैं। इसी तरह अगर आपके कहीं चोट लगी हुई है खुदा ना खास्ता, अगर कहीं कोई जिस्म का हिस्सा जो है वो जख्मी है तो उसे धोने से नुकसान होने का अंदेशा है तो इस पर भी पट्टी बांधकर इस पर मसा किया जा सकता है। फिर इसके बाद फरमाया व इन कुन तुम जुनुबन फतहरू, कि अगर तुम जो है वो जनाबत की हालत में हो फतहरू तो नहाकर पाक हो जाओ, तो फिर तहारत हासिल कर लो। तो ये जो लफ्ज है कि अगर तुम जो है वो जुनुब हो, और पहले भी आप इसको पढ़ चुकी हैं कि इसके मानी है कि अगर तुम नापाक हो, तुम तहारत से दूर हो, तो ये जो नापाकी है, नापाकी की हालत में हमारे सामने क्या अमल का असूल आया कि फिर तुम नहाकर पाक हो जाओ। फत्वाहरू, फत्वाहरू जो है इसके माने क्या है कि तुम जो है फिर पानी के जरिए से तहारत हासिल कर लो, क्योंकि जो पानी जो है वो पाक है और पानी के जरिए तहारत हासिल की जा सकती है। तो फरमाया कि फिर तुम जो है वो फतहारू तहारत हासिल कर लो। और एक तहारत होती है जो वुजू के जरिए हासिल की जाती है और एक तहारत होती है जो कि गुसल के जरिए हासिल की जाती है। तो याद रखें कि नापाकी की 2 किस्में हैं, एक हद से असगर, जैसे हवा खारिज हो गई, पेशाब की हाजत हो गई, बाथरूम की हाजत हो गई, तो बैतुल्ला से तो बैतुल खला से ये जो छोटी नापाकी है जैसे हद से असगर, हवा खारिज होने से या बैतुल खला से फरागत के बाद जो है ये हद से असगर वाकया होता है और अब वुजू के जरिए पाकिजगी हासिल की जा सकती है। जो हद से अकबर है इसे हालत जनाबत भी कहते हैं, हालत जनाबत यानी नापाकी की हालत। और ये जो नापाकी की हालत होती है जैसे मियां बीवी का ताल्लुक, मेंसेस यानी हैज, बच्चे की पैदाइश के बाद जो निफास का खून आता है, या फिर एहतलाम, एहतलाम जो है जैसे ख्वाब में मादा मनविया खारिज होने की वजह से, तो बहरहाल इन हालतों में गुसल फर्ज हो जाता है। वइन कुंतुम जुनुबन, और अगर तुम जो है वो जनाबत की हालत में हो तो नहाकर पाक हो जाओ। वइन कुंतुम मर्दा, और अगर हो तुम बीमार, नंबर 1। नंबर 2, औ अला सफरिन, या सफर की हालत में हो, औ जा अहदुम मिनकुम मिनल गाइती, या तुम में से कोई शख्स जो है वो रफा हाजत करके आए। गाइत, या पहले भी पढ़ चुकी हैं, पीछे आपने सूरत निसा में भी पढ़ा ये लफ्ज, और इसका रूट है गैन व तोए। असल में ये पस्त जमीन को कहते हैं, जैसे निचली जमीन को, नशेबी को, या फिर जमीन के अंदर गड़ा हो, उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो उस जमाने में लोग क्या करते थे कि रफा हाजत करने के लिए दूर जाते थे और ऐसी जमीन में जाके अपनी हाजत को पूरी करते थे जो निचली हो, जो पस्त हो। इसी से किनायतन ये लफ्ज जो है वो रफा हाजत के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। या तुम में से कोई शख्स जो है वो आया है मिनल गायती, रफा हाजत करके। नंबर 4, औला मस्तुमुन निसा, या तुमने औरतों को हाथ लगाया हो, और लम्स जो है इसके मानी होता है कि छूना, और यहाँ पे ये जो मियां बीवी का ताल्लुक है उसको यहाँ पर किनायतन जो है वो बयान किया गया है कि बीवियों से قربت حاصل کی، ان سے تعلق قائم کیا، فلم تجدوا ماء، پھر تمہیں پانی نہ ملے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو تم پاک مٹی سے جو ہے وہ تیمم کر لو. اور تیمم کیسے کرنا ہے اس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، بس اس پر ہاتھ مار کر، فامسحوا بس مسا کر لو، بوجوہکم اپنے چہروں پر، نمبر دو، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں پر، منہ اس سے. اب یہاں پر جو ہے تیمم کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو، اپنے چہروں اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو. منہ اسی سے، یہ ضمیر جو آئی ہے یہ مٹی کے لیے آئی ہے، یہ زمین کے لیے آئی ہے کہ اس سے، یعنی مٹی سے، مٹی پر ہاتھ مارنے کے بعد جو ہے پھر اپنے چہروں پر اور اپنے ہاتھوں پر پھیر لیا کرو. تو یہاں پر جو ہے ہمارے سامنے چار حالتیں آئی ہیں کہ جب پانی کا استعمال کرنا ممکن نہیں ہے، یا پھر پانی کے استعمال سے نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، یا پھر پانی میسر نہیں ہے. نمبر ایک، جیسے بیماری کی حالت میں پانی کا استعمال کرنا بسا اوقات مشکل ہو جاتا ہے. نمبر دو، سفر میں پانی میسر نہیں ہے. نمبر تین جو ہے وہ کسی نے رفع حاجت کی ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کو پانی کی ضرورت ہے، یا پھر میاں بیوی کا جو تعلق جس کے بعد جو ہے وہ غسل کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہاں پر پھر یہ بات بتائی گئی کہ تم ان صورتوں میں تیمم کر لیا کرو. اور تیمم کا طریقہ ہمیں بخاری کی حدیث سے بھی پتا چلتا ہے جو حضرت عمار رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلیاں ایک مرتبہ زمین پہ ماری، پھر ان میں پھونک ماری اور فالتو مٹی اڑا دی. بعض لوگ نا مٹی کو لے کے چہرے پہ ملنے لگتے ہیں، تو ہاتھوں کو مٹی پر مارنے کے بعد مٹی کو پھونک مار کے جھاڑ دینا چاہیے. پھر کیا کرنا ہے، پھر ان سے اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے بائیں ہاتھ کی پشت تک کا اور بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے دائیں ہاتھ کی پشت تک کا مسا کیا، پھر ان دونوں ہتھیلیوں کو منہ پہ پھیرا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اور اب آپ دیکھ لیں کہ یعنی ایسا بھی صحیح ہے کہ آپ نے ایک ہی دفعہ مٹی پر ہاتھ مارا اور اس کے بعد جو ہے اپنی پہلے دونوں ہاتھوں پر پھیرا اس کو، پھر اس کے بعد اپنے چہرے پر، تو تیمم ہو جاتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ ہاتھ مٹی پر مارنے کے بعد ہاتھوں پہ پھیرا، پھر دوبارہ جو ہے مٹی پر مار کر چہرے پہ پھیرا، تو یہ تیمم ہو جاتا ہے. تو یہاں پر آپ نے پاکی حاصل کرنے کے لیے دو باتیں پڑھی. نمبر ایک، آپ نے جو ہے وہ وضو کے بارے میں پڑھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے غسل کے بارے میں پڑھا کہ پاک ہو جائیے غسل کے ذریعے. اور اگر پانی میسر نہیں ہے اور غسل بھی نہیں کر سکتے، وضو بھی نہیں کر سکتے، تو پھر ان دونوں کا قائم مقام تیمم ہو جاتا ہے. بعض لوگ جو ہے صرف وضو کے لیے تیمم کرتے ہیں، اور جب غسل کی حاجت ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پانی نہیں ہے اس لیے میں ناپاک ہوں اور میں نماز نہیں پڑھتی، یا میں روزہ نہیں رکھتی اس لیے کہ پانی نہیں ہے. تو یاد رکھیں کہ تیمم وضو اور غسل دونوں کا نعم البدل ہو سکتا ہے ضرورت پیش آنے پر. اور اگلی آیت کا حصہ تو بڑا ہی خوبصورت ہے، مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّن حَرَج، نہیں چاہتا اللہ، لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم، فرمایا کہ وہ کرے تم پر، من حرجن، کچھ تنگی. تو اللہ یہ پسند نہیں کرتا کہ تم پر جو ہے وہ تنگی کرے. تو حرج جو ہے جیسے ایسی جھاڑی کو کہتے ہیں جس اتنی جو اتنی گھنی ہو کہ اس میں سے گزرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے، تو اس کے لیے حرج کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. تو اس کے معنی کیا ہے کہ یہ لفظ صرف تنگی کے لیے استعمال ہونے لگا. تو اللہ رب العزت یہ پسند نہیں کرتے کہ زندگی تم پر تنگ کر دی جائے. کیسے زندگی تنگ ہوتی؟ پانی میسر نہیں ہے اور لازم کر دیا جاتا کہ ناپاکی کی حالت میں پانی سے وضو بھی کرنا ہے اور پھر غسل بھی کرنا ہے. تو سوچیں زندگی کتنی مشکل ہو جاتی، کتنی تنگ ہو جاتی. تو اللہ رب العزت بہت ہی محبت کرنے والے، بہت ہی پیار کرنے والے، और अपने अहकामात में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रियायत रखी है, सहूलत रखी है। अल्लाह को मंजूर नहीं है, उसको पसंद नहीं है कि अलैकुम मिन हरज के तुम्हें तंगी में मुब्तिला करे, वाला कहीं युरीदु लियुतहिरकुम, लेकिन वो चाहता है कि तुम्हें पाक करे। कितनी खूबसूरत बात है कि अल्लाह को मंजूर ये है कि तुम्हें पाक साफ रखे। इसीलिए अल्लाह ने तहारत के कवायद बता दिए। कितना खूबसूरत है दीन इस्लाम के घर की चार दीवारी से लेकर, बाथरूम से लेकर, बेडरूम और बेड से लेकर हुकूमत के तख्त तक के तमाम आदाब जो है वो सिखाए। इसलिए एक ईसाई ने कहा था कि उमर उमर तो उस कौम से ताल्लुक रखता है जो कुत्तों को आदाब सिखा दे, जिसने कुत्तों को भी आदाब सिखा दिए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहता है कि तुम्हें पाक करे, वले युतिम नेमतहू, और अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दे, वले युतिम नेमतहू अलैकुम लअल्लकुम तशकुरून, और अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दे शायद कि तुम शुक्रगुजार बनो। मेरी प्यारी बहनों, ये वुजू गुसल तयमुम के आदाब बताने के बाद, इसके तौर तरीके बताने के बाद, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसकी हिकमत बयान की है। पहली हिकमत क्या है कि अल्लाह ने हमारे लिए आसानी पैदा की है। ये इस्लाम की नेमत है कि उसने हमें जीने का सलीका सिखाया, उसने हमें बताया कि किस तरह से जो है वो पाकी हासिल करनी है, और अगर पानी मुयस्सर नहीं है तो फिर तहारत की हिस कायम करने के लिए अल्लाह ताला ने कहा कि मट्टी से जो है तुम तयम्मुम कर लो, मट्टी से तयम्मुम कर लो। और दूसरी बात जो बहुत ही अहम है वो ये कि ये जो है ये सहूलत है, पाबंदी नहीं है। जैसे पानी आलमगीर है, हर जगह मिलता है, इसी तरह मट्टी भी हर जगह मुयस्सर हो सकती है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने बातिन और जाहिर उसमें तहारत की हिस को कायम रखा। और ये जो है ना कि वले युतिम्मा नेमतहू अलैकुम, अब आप देखें कि वुजू तयम्मुम और पाकी के सिलसिले में ये कहा कि अल्लाह ने तुम पर जो है अपनी नेमत पाक मुकम्मल कर दी। तो पाकीजगी नफ्स की नेमत एक ऐसी नेमत है, पाकीजगी जिस्म भी जिसमें शामिल है, और इंसान पर अल्लाह की नेमत उस वक्त मुकम्मल होती है जब नफ्स जिस्म दोनों की तहारत और पाकीजगी के लिए पूरी जो रहनुमाई है, पूरी हदायत जो है वो दी जाए। और यहाँ पे यही हदायत जो है वो दी जा रही है, ये है मेरा और आपका दीन, जो कि इतना खूबसूरत है, इतना प्यारा है कि पहले हलाल और हराम के तरीके, अब जिस्म की पाकी के तरीके। और एक मुसलमान के लिए जिस्म की सफाई इतनी जरूरी है जितनी नफ्स की पाकीजगी और सफाई, के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस्मानी सफाई ईमान का हिस्सा या आधा ईमान है। और फिर क्या करना चाहिए, लअल्लकुम तशकुरून, शायद कि तुम जो है वो शुक्रगुजार बनो। तो ये है सारा मुद्दा और ये है सारा फायदा। और इस सिलसिले में ये जो यहाँ पे आपने सब कुछ पढ़ा तयम्मुम का तरीका भी, इस सिलसिले में सही बुखारी की ये बात आप याद रखिएगा कि एक सफर में बैदा के मकाम पर हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा का हार गुम हो गया, जिसकी वजह से वहां रुकना उन्हें पड़ा, और सुबह की नमाज के लिए लोगों के पास पानी ना था। अब पानी की तलाश हुई, पानी मिल ही नहीं रहा था, तो उस वक्त पर यह आयत नाजिल हुई जिसमें तयम्मुम की इजाजत दे दी गई। हजरत उसैद बिन हुदैर रजी अल्लाह अन्हु ने यह आयत सुनकर कहा, ए आले अबी बकर, तुम्हारी वजह से अल्लाह ने लोगों के लिए बरकतें नाजिल की हैं, और ये तुम्हारी कोई पहली बरकत नहीं है, तुम लोगों के लिए सरापे बरकत हो। इसे सही बुखारी ने रवायत किया है। तो असल बात क्या है कि तुम जो है वो अल्लाह के शुक्रगुजार बनो। और लाल्ला के मानी होते हैं शायद। अब हर एक पर खुद डिपेंड करता है कि वो शुक्रगुजार बनता है या नहीं बनता, और आप फिर अपना जायजा लीजिए कि आप जो है क्या पाक रहती हैं। जब आप जो है नापाक होती हैं तो फिर पाकी हासिल करने के लिए आप बेचैन होती हैं, आपको ये फिक्र होती है कि नापाकी की हालत में मेरा कोई फर्ज मुतासिर ना हो जाए, या नापाकी की हालत में आप इधर उधर जो है बड़े सुकून से गुजर रही होती हैं, जा रही होती हैं और अपने काम कर रही होती हैं। तो याद रखें कि जो एक ईमान वाला है, जो मोमिन है, उसको फिक्र होती है कि मैं फौरन जो है वो पाकी इख्तियार करूं और उसके बाद मेरे ऊपर जो फर्ज आयद होते हैं उनकी अदायगी की मैं फिक्र करूं। हैज की हालत, निफास की हालत, मियां बीवी का ताल्लुक या किसी भी वजह से नापाकी की हालत में से जब गुजरे और जब वो नापाकी की हालत जो है वो उससे जो है वो निकलने के लिए, पाक होने के लिए फौरन बेचैन होना चाहिए तबीयत का, ताकि जो है हम क्या करें कि पाक होकर जो हम पर फराइज हैं उसकी अदायगी कर सकें।